कुंदकुंदाचार्य का जो लिखा हुआ ग्रंथ है उसके ऊपर स्वामी जी ने जो प्रवचन किए हैं उसके प्रवचन रत्नाकर भाग एक, इसके हम 11वें नंबर के पृष्ठ पर आए हैं। इसमें हम यह जो नमस् समय सारा नाम का जो कलश है उसके ऊपर स्वामी जी के जो अनुभव के बोल है वो बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, पहली लाइन से लेते हैं। हम कल दो चार लाइन पढ़ी थी, पोतानो भगवान शुद्ध चैतन्य वस्तु एनो पर्याय मा आदर करियो, त्यारे पर्याय मा जे अनुभूति थई ते पर्याय सिद्ध करियूं के स्वानुभूतिनी पर्याय मा ते प्रकाशे चे स्वानुभूत्या प्रकाशते। यह जो बात है उस बात को समझाते वक्त ये समझा रहे हैं कि जो भगवान आत्मा जो है, जैसा उसका स्वभाव है, जैसा उसका स्वरूप है, ऐसी जो शुद्ध चैतन्य वस्तु एनो पर्याय में आदर करियो। एनो पर्याय में आदर करियो यानी जिस जीव ने उस स्वभाव को जाना और उसको ऐसा लगा कि अहो यह मेरा स्वरूप है, आज तक तो मैंने इसके बारे में कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, ऐसा अद्भुत स्वरूप मेरा है और इसे हमें अनुभवना चाहिए, इस प्रकार से उसके प्रति आदर किया यानी विश्व से अन्य बातों से उसको अधिक जाना, तो कहते हैं कि उस समय जो पर्याय में अनुभूति हुई है तो वो जो पर्याय में अनुभूति है वही स्वानुभूत्या प्रकाशते है, वह अनुभूति पर्याय ते प्रकाशित है। अभी क्या और इसके लिए और एक्सप्लेनेशन क्या कर रहे हैं के द्रव्य द्रव्य थी प्रकाश तो नहीं, यानी जो द्रव्य है वह द्रव्य कभी परिणमित होता नहीं। देखो हाँ, अभी हम प्रवचन सार में अभी हमने ऐसा पढ़ा था कि द्रव्य ही स्वयं परिणमता है, क्योंकि पर्याय और द्रव्य ये दोनों संबंधित हैं, इसलिए वहां कहेंगे कि द्रव्य ही पलटा है। यहाँ तो वहां तो ज्ञान का विषय था, यहाँ तो दृष्टि का विषय है। दृष्टि यानी जब हम द्रव्य को द्रव्य की अपेक्षा से देखते हैं तो उस द्रव्य को अपरिणामी कहा गया है, यानी जो कोई परिणमन होता है वह पर्याय में होता है और द्रव्य में नहीं होता है। तो द्रव्य और परिणाम एक, द्रव्य और पर्याय यह एक में है ना, तो कहते नहीं, द्रव्य द्रव्य है और पर्याय पर्याय है, दोनों में भिन्नता है। यहाँ पर ये बताएंगे क्योंकि जो अनुभव में आने वाला ऐसा जो द्रव्य है वह तो पर्याय रहित ऐसा द्रव्य है। इसलिए यहां क्या कह रहे हैं कि द्रव्य अफर है, अफर है यानी गुजराती शब्द ही है, यानी जो परिणमता नहीं है, अपरिणामी अकर्ता स्वभावी ऐसा द्रव्य है। तो क्या कहा, द्रव्य द्रव्यति प्रकाश तु नथि, यानी जो द्रव्य है वह द्रव्य से ज्ञाना नहीं जाता, प्रकाशते यानी जाना नहीं जाता। स्वानुभूत्या चकासते का, चकासते का प्रकाश गई है ना, प्रकाश चकासना यानी कि चमकता है, कहो क्या बोलते आप, चकास चकासी ने जुओ शू कह बराबर गुजराती अर्थ मुझे मालूम नहीं है। हा? ये संस्कृत शब्द है, चकास्ते का अर्थ है प्रकाशता है यानी ज्ञान में आता है, जानने में आता है, स्वानुभूति से ही जानने में आता है, यानी अपने आत्मा को अन्य किसी भी प्रकार से हम हासिल नहीं कर सकते। अब आपने ऐसा पूछा ही है तो फिर और थोड़ा लंबा ही देता हूं कि आत्मा का अनुभव करना हो, आत्मा तो बहुत दूर की बात है बहन, आपको तमिल भाषा आती है ना, माटुंगा में रहते नहीं आती है, तो मैं आपको पूछूंगा तमिल भाषा आपको बोलनी है सीखनी है तो कितने उपवास करोगे तो तुमको तमिल भाषा आएगी, कितने व्रत करोगे, कितने दान करोगे, हाँ सीखना पड़ेगा। ये शॉर्ट किया बोले जाती लंबा मत, तो यहां कहते हैं जितना तप करो, दान करो, व्रत करो, पूजा करो, भक्ति करो, तब भी आत्मा अनुभव में नहीं आती। तो कैसा अनुभव आएगा, स्वानुभूति द्वारा आएगा, यानी उसको हम अन्य विश्व जगत के पदार्थों से यह बहुत अलौकिक है ऐसा उसका हम आदर करेंगे, उसका सत्कार करेंगे, यानी उसको सबसे अधिक जानकर वही पकड़ने की कोशिश करेंगे, ग्रहण करने की, जानने की कोशिश करेंगे, तो स्वानुभूति से ही जानने में आने वाला है। अब वह जो जानने की जो प्रक्रिया है वो द्रव्य नहीं जानेगा ऐसा कह रहे, ये द्रव्य थी क्या लिखा, द्रव्य यानी जो स्वभाव है वह द्रव्य थी प्रकाश तो नहीं, द्रव्य गुण थी प्रकाश तो नहीं, यानी द्रव्य गुण थी प्रकाश तो नहीं, ये द्रव्य और गुण में जगह चाहिए, गैप चाहिए, कारण के बनने ध्रुव छे, बनने ध्रुव छे यानी बनने जो द्रव्य है और जो गुण है दोनों ही कायम रहने वाले हैं, ते स्वानुभूति नी पर्याय द्वारा प्रकाशे छे, स्वानुभूति से ही वह जानने में आएगी, प्रकाश में आएगी, आवो मार्ग छे। भाई भगवान नु नाम केवू छे, भगवान नु आम केवू छे, यानी भगवान को इस तरह बताना है, त्रिलोकनाग परमात्मा ना वचनो छे, एना आ कहेन छे, यानी उन्होंने ये बात बताई हुई है, जेम कोई करोड़पति आने मोटा घरनी कन्या ना कहना वे तो तरत पोते स्वीकारी ले छे, तेम आ तो त्रिलोकनाथ ना कहन छे, तेने झट स्वीकारी ले ना न पाड़। देखो ये समझाना चाहते हैं कि अगर कोई कहेगा कि भाई तुम्हें ये फलानी फलानी जगह पर जाओगे तो आत्मा का अनुभव होगा, अच्छा अच्छा अभी क्या है मेरे घर में बच्चे थोड़े छोटे हैं जरा बड़े होने दो, या अन्य अन्य और हजारों बहाने बताते हुए वह वहां नहीं जाएगा, और कहेंगे कि अरे वो इतना दूर जाने के बाद वहां बहुत बड़ा खजाना है, तुम्हें वहां अब जो रुपये की संपत्ति मिल सकती है तो बाकी सब काम बाजू रख कर वहां दौड़ता है और वो चीज हासिल करने की कोशिश करता है। तो ये कहते हैं वैसा जो जिनेंद्र भगवान ने बात बताई है तो उसमें हम विश्वास नहीं करते, जिनेंद्र भगवान बताते हैं के निमित्त से कार्य नहीं होता तो हम तो ऐसा ही मानते कि नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है, शायद उनको मालूम नहीं हुआ होगा, लेकिन हम तो देखते हैं ना कि निमित्त आए बिना कार्य नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि राग करने से धर्म नहीं होता, पुण्य करने से धर्म नहीं होता, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अरे हमने तो कितनी बार शिखर जी होके आए, तो ये सारा झूठ हो गया? हमने तो इतने करोड़ों रुपए का दान दिया, तो ये क्या सब झूठ हो गया? हमने धर्म नहीं किया क्या? हमने इतनी धर्मशालाएं बांधी, इतने धर्मार्थ दवाखाने खोले, तो धर्म नहीं हुआ, ऐसा हम मानते हैं। और तो और कहेंगे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, क्या बात करते हो? ये देखो ये पेंसिल मैंने उठाई, एक नहीं दो दो, बोलते एक द्रव्य, याने क्या कह रहे हैं? जिनेंद्र भगवान जो बात बताते उसके ऊपर विश्वास नहीं लाता है, यहां क्या समझा रहे? देखो ये नीचे से छठी लाइन है, तेम तो आ त्रिलोकनाथना कहन छे, जो कि जो बत बताई वो, तेने झट स्वीकारी ले ना न पाड़, त्रिलोकनाथ तारी पर्याय ना लग्न ध्रुव साथे करावे छे। क्या कहते हैं? ये जो त्रिलोकनाथ है, ये तेरी शादी किससे करा रहे हैं? तो कहते कि ध्रुव से, यानी यहां तुमको पर्याय बताया है, और पर्याय का हमेशा जो त्रिकाली ध्रुव ऐसा है उसी के साथ संबंध होगा, ऐसी वह अरेंजमेंट करा रहे हैं, ऐसी तेरी शादी की तैयारी करा रहे हैं, और तू ना बोल रहे, तू ना पाड़े छे, एम कहे छे। क्या कहा? तो लग्न करावे छे, तारे लगननी लगाड़, लगननी लगनी लगाड़वी हो तो द्रव्य साथे लगाड़, आ सिवाय बीजे क्या एक सुख के शांति छे नहीं, पैसा मा, राग मा, बेरा छोकरा मा, मोटा हजीरा वगैरह मा क्या एक सुख नथी। तो कोई एम कहे के ते सुखना निमित्त तो छे ने, शाना निमित्त, ए तो बधा दुखना निमित्त छे। याने क्यों ऐसा क्यों कह रहे? दुख के निमित्त, क्या ये दुख? हाँ, हजीरा यानी बहुत, मतलब हाँ, बंगला को हजीरा कहते हैं, महल। ये क्या कह रहे हैं कि ये सारी जो बातें हैं, पैसा है, राग है वगैरह वगैरह, इसमें से सुख प्राप्त नहीं होता। क्यों? कि जो पुद्गल है उन पुद्गलों में सुख नाम का गुण ही नहीं है, तो जिसमें सुख नाम का गुण नहीं है वो कैसा प्राप्त होगा? और जो पर जो जीव है उनका सुख उनके पास है, और वो जीव को उसने जीव कहा माना है? वह तो पुत्र है, स्त्री है, उसको तो एक मतलब शरीर रूप से माना है उसने, इसीलिए तो उसमें से सुख लेने की प्राप्ति करने की वह कोशिश करता है। तो कहते ये साना निमित्त, ये तो बधा दुखना निमित्त छे। आहा हा, देखो क्या कहते हैं, वह स्त्री है, पुत्र है, बंगला है, यह दुख देते, सुख नहीं देते हैं, तो दुख तो दे रहे हैं ऐसा आप कह रहे हैं ना, उनके वो दुख दे रहे ऐसा बता रहे हैं ना, यहाँ क्या बता रहे हैं? हाँ वीरेश भाई, हाँ क्या बोल रहे साहब, दुखी दे रहे हैं ना, हाँ क्या कहते हैं? अरे वो बोलते हैं दुख दे रहे, आप बोलते हैं दुखना निमित्त छे। देखो ये इनसे सुख प्राप्त, हाँ बोलो, हाँ देखो बिल्कुल सही है। देखो यहाँ ये समझा रहे हैं कि पर से तुझे सुख नहीं मिलता और पर से दुख नहीं मिलता। भाई ये हमने उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता मानी है और हमने स्वयं ने उसमें से सुख दुख की कल्पना की है। अगर पर पदार्थ तुझे दुख देता होगा तो ये पर पदार्थ कब से है साहब और कब तक रहने वाला है? तो अनंत काल तुम्हें दुख देगा ना, ख्याल में आया? तो तुम्हें केवल ज्ञान नहीं होगा, केवल ज्ञान नहीं होगा तो आनंद सुख की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि तीनों काल तो वो पर पदार्थ तो है ही, हा? तो वो दुख देंगे कि नहीं? तो कहते नहीं, वो दुख में निमित्त होंगे। देखो जो मुनिराज होते हैं, अब हमारी तुम्हारी बात छोड़ो, पांडव जो थे पांचों ही पांडव, उनके तो राज था कि नहीं, बहुत बड़े राजा थे ना। पांडव को तो दूर रखो, हमारा हमेश का चक्रवर्ती भरत, वो तो षटखंड का आधिपत्य था ना, उसके इतनी उसकी संपत्ति थी, इतना वैभव था, क्या उसको उन्होंने इन दो मतलब पांडवों ने और ये भरत चक्रवर्ती ने क्या उनका त्याग नहीं किया? और अगर वो सुख भी निमित्त होते, सुख देने वाले होते हा? तो क्या उनको छोड़ के जाते? और दुख देने वाले होते तो फिर पैदा क्यों, मतलब उसको हासिल क्यों किया? जब उसमें एकत्व बुद्धि है तब वह दुख देंगे, रहेगा तो सुखी सुखी मानेगा, और छूटते जाएंगे तो दुखी दुखी मानेगा। देखो हम भी अपने माता पिता होते हैं, पुत्र पौत्री को जो भी होता है, तो वो मेरे 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 ऐसा हमने मान के रखा है, और समझो किसी का देहांत हो जावे तो एकदम दुखी, एकदम दुखी दुखी, ख्याल में? तो हम पर को दुख या सुख का कारण मानते हैं। जब अभी उन्होंने अपने इतने सारे रिलेटिव्स कहो या परिजन कहो या अपने स्वजन कहो, इनको सबको छोड़ दिया, क्योंकि वे जानते थे ना वो सुख है, ना उनसे सुख है, ना वो उनसे दुख है, ख्याल में? यानी पर पदार्थों में से मुझे सुख की या दुख की प्राप्ति नहीं होने वाली है। अगर मैं उसमें एकत्व करता हूं तो मैं दुखी हो रहा हूं, तो वो दुख के निमित्त होंगे। अरे इतनी लंबी बात क्या है? जो कोई बहुत हमें बहुत क्या कहते हैं प्रिय है, ऐसा हमारा बेटा होगा, तो जब तक बेटा अपनी बात सुनता है तो हम सुखी, और वही बेटा कुछ दिन के बाद अपना नहीं सुनेगा तो हम दुखी। ऐसा क्यों? बेटा तो तुझे सुख देता था ना। ये सुख दुख की कल्पना पर से प्राप्त करने की जो मेंटेलिटी है, मान्यता है, वही दुख का कारण है, ख्याल में? तो यहां क्या समझा रहे? देखो ये जो क्या किधा कि पैसा मा, राग मा, बेरा छोकरा मा, मोटा बंगला वगैरह, महल मा वगैरह मा क्या एक सुख नहीं, तो कोई एम कहे के ते सुखना निमित्त तो छे ने, शाना निमित्त, ए तो बधा दुखना निमित्त छे। आहा, आ बधा जैन कुल मा जन्म्या, तेमने पन खबर नथी के जैन शुं केवाय। यानी जैन किसे कहते हैं, ये जैन कुल में पैदा हुआ लोगों को भी मालूम नहीं, ऐसा कहते हैं। कोई जानता है जैन किसको कहते हैं? हाँ, आप जानते हैं जैन किसको कहना? उधर कुछ नहीं लिखा है, आप जानते हैं? अच्छा, हाँ हाँ, इन्होंने ऐसा कहा, जो मोह राग द्वेष को जीतेगा वह जैन। अभी देखो, मोह को तो पूरा जीतना चाहिए, क्या सम्यक दृष्टि जीव राग को भी पूरा जीतता है? तो इसके लिए आप ऐसा कहो, आपने सही कहा है, इन जनरल आपकी बात सही है। क्या कह रहे हैं? जिसने मोह को तो पूर्ण जीत लिया है, यानी पूर्ण जीता है, क्षय किया होगा, ऐसी गरज नहीं है। उपशम, क्षय उपशम या क्षय, तीनों में से कोई ना कोई सम्यक तो जिसके होगा, उसके आंशिक राग द्वेष का विजय उसने प्राप्त किया है। यानी अनंतानुबंधी और दर्शन मोहनी कर्म का वहां अनुदय समझाने के लिए हो, ख्याल में? तो देखो, उसको जैन कहते हैं, और हमने तो क्या माना, रोज हम देरासर जाते हैं, रोज भगवान को पैर छूते हैं, उनकी पूजा आजा करते हैं, रविवार का व्रत पालन करते हैं, क्या कौन सा रविवार का होता है, क्या सोमवार का, कौन सा होता है, शुक्रवार का, अच्छा शुक्रवार का, हा? रविवार का, अच्छा रविवार का व्रत पालन करते हैं। ये हमारी प्रभाव में बहुत भोली आदत है, कोई पेट में नहीं रहेगा उसको, पूरा बोल देगी, क्योंकि स्वयं ने गलती की है और अभी सुधरी है, तो क्या है उसमें, जो हो गया, हमारे कल भाई साहब ने बताया वो भूत था, भूत, अभी भूत भग गया, अभी भगवान हमारे साथ है, बोलते हैं। देखो भाई, कोई भी अपने माता के पेट से कुछ सीख के नहीं आता है। ऐसा है, जिस समय जो योग्यता होगी वैसी सहज परिणति इस जीव की होती है। अब उस जीव का ऐसा ही खोटा कोई परिणाम चलने का होगा तो उनको निमित्त भी सहज ऐसे मिलते हैं। वो निमित्त, डॉक्टर साहब, निमित्त के कारण से उसको खोटा रास्ता मिलता है ऐसा नहीं, उस जीव के ही ऐसे परिणाम हो जाते हैं तो ऐसे सहज निमित्त मिलते हैं। और जिस जीव की कोई हित की बात होने वाली उसके लिए तो निमित्त भी ऐसे सहज रूप से मिलते हैं। अब मैं आपसे बोलता हूं, आप जब यहां माटुंगा में रहती थी कितने दिन आई यहां पर? एक भी नहीं, समझो दो चार बाज आ गए। अच्छा आ गए, अरे अभी हाँ संडे को कभी कभी आई बराबर, और अभी रहती है कांजूर मार्ग, अब रोजाना 6 महीने से आती। बोलो इसका अर्थ क्या हो गया? अंदर से जैसा जो परिणमन होना है कहो या पुरुषार्थ जैसा होना है तो सहज रूप से ऐसे निमित्त भी मिलते हैं कि जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने को मिले और अपनी जो कोई गलतियां हैं उसका एहसास हो जाए और लगता है कि नहीं मैं यहां आऊंगी तो मेरा ही कल्याण होने वाला है। तो ये देखो, जिसकी उम्र 68 साल की है, जास्ती है कम है, कितनी है? अच्छा 64 की है, फिर भी अकेली आती जाती है। देखो कांजूरमार्ग कितना, 10-15 किलोमीटर दूर है, कितना है 10 किलोमीटर दूर होगा, जो कोई होगा। कहने का ये मतलब है कि हम आज तक जैन किसे कहते हैं इस बात का हमें मालूम नहीं। हम तो जैन कुल में जन्मे हैं, स्वयं को जैन कहलाते हैं, ख्याल में है? लेकिन जैन किसे कहना हा? अगर आपको मालूम होगा तो मैं जब ही जैन लघु सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ाता था उसमें जैन के 3 प्रकार हम बताते थे, एक कुलधारी जैन, एक नामधारी जैन और एक भावधारी जैन, याद है सबको? तो उसमें से ये भावधारी जैन की बात है, ख्याल में? हमने तो आज तक जैन कुल में जन्मा इसलिए हम जैन है, ऐसा नहीं है, ख्याल में आया? तो क्या कहते हैं, हवे जैने नमस्कार करूं चूते, क्या नहीं रहेंगे बीच में, आ बदा जैन कुल मां जन्म्या, तेमने पन खबर नथी के जैन शू कहवाए। जैन शू कहवाए ने जैन किसे कहते हैं? जैन कोई संप्रदाय नथी, पहले में पहले ये लेना, जैन कोई वाड़ो नथी, जैन कोई धर्म नथी। चलो आ गए, तो जैन शू छे? ये तो वस्तु नु स्वरूप छे। देखो, गुण स्वरूप जे शुद्ध चैतन्य घन, यानी अनंत गुणों का जो कोई पिंड है ऐसा शुद्ध चैतन्य घन, तेने जे पर्यायमा उपादेय करी अनुभवे, तेने राग ने अज्ञान ने जीत्या, तेने जैन केवाय। तो वीरेश भाई, हम अभी जैन है क्या? नहीं, देखो हाँ भी बोलने को तैयार नहीं और ना भी बोलने को तैयार नहीं। हाँ, आज तक तो मानते थे ना, ये मुसलमान छे हूँ जैन छू, जैन छू, ये हिंदू छे हूँ जैन छू, जैन छू, यहां तो ना पड़े छे। हाँ, जिसने राग द्वेष को जीता है और मोह को पूरा, राग द्वेष का आंशिक, यहां तो ज्ञान की भी बात उठाई उन्होंने। तो कह के राग ने अज्ञान ने जीतिया छे, भाई ये समझ तो करो, अज्ञान कोने केवा है कि रास्ता कैसा क्रॉस करना, उसको ज्ञान या अज्ञान नहीं बोलते। अरे जिसने आत्मा को जाना नहीं है वह अज्ञानी है, मिथ्या ज्ञानी है ना। मिथ्या ज्ञानी का अर्थ क्या होता है? अज्ञानी है। और जिसने स्व को जाना है वो ज्ञानी है। तो यहां क्या बता रहे, जो राग ने अज्ञान ने जीतिया तेने जैन केवाय। देखो भाई, नींद उड़ जाए ऐसी बात है, ख्याल में आया? हमें तो बहुत गर्व होता है ऐसा, मतलब अरे हमें जैन छे, क्या मालूम है तुमको? मैं एक जगह गया था, अभी नाम भी बोलता नहीं हूं मैं, वहां पर एक भाई आए थे ऐसे, वो बोलने लगे मैं कौन हूं जानता हूं? अरे मेरी मम्मी गए 40 साल से एक टाइम खाना खाती है, मेरा बड़ा भाई वो एक दिन अल्टरनेट खाना खाता है, मेरा फला फला वो ऐसा करता है, मेरा ढिकना ढिकना ऐसा करता है। अरे तू क्या करता है? मैं ऐसा जैन हूं वो और तुम हमको जैन की बातें सिखाने आए हो यहां, ऐसा तो समझ में आया तू कैसा जैन है। ख्याल में है? यानी वो कैसी बात हो गई मालूम है आपको? तो डॉक्टर साहब हमारे पास आए के लिए, अरे तुमको लड़की देनी है ना, ब्याह कराना है ना? हाँ बिल्कुल साहब। तो लड़की करना, ब्याह नहीं है तो वो फला फला घर में बहुत एक बहुत अच्छा स्थल है। क्या है? उसका बाप डॉक्टर है, बड़ा भाई इंजीनियर है, उसका छोटा भाई बैरिस्टर है, उसके इतने करोड़ों की संपत्ति है, ये है वो है वो ऐसा बड़ा, उसके ऐसा जमाई है, उसकी लड़की ये है वो है। मैंने कहा वो डॉक्टर साहब वो बात बराबर है, पर वो लड़का कैसा है? अरे वो तो लूला पांगला है। क्या बने अपने क्या करने का है? पैसा है ना उसके पास। तो मैं आपसे पूछता हूँ, मेरी तो बात छोड़ो, मैं तो अनपढ़ हूँ, आप अपनी बेटी उससे ब्याहोगे कि नहीं? हाँ अगर शादी की हो और बेटी हो तो की बात है। वो कहने का मतलब ये है कि हम अन्यों के तरफ से, मैं ऐसा जैन हूं, अरे तू क्या करता है ये, इसकी तो नक्की बात कर, वो तो कोई देखने को तैयार नहीं। इसलिए कहते जैन कुल में जन्मा होते हुए भी जिसको जैन क्या है इस बात की पता नहीं, तो जैन बनेगा कब? ख्याल में क्या कह रहे? देखो गुण स्वरूप जे शुद्ध चैतन्य घन तेने जे पर्याय मा उपाधे करी अनुभवे तेने जैन केवाय। हवे जेने नमस्कार करूं छू ते केवो छे भावाय कहता शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु छे। यानी जिसका भाव, यानी जिसका विद्यमानता जिसकी है, वो कैसा है कि शुद्ध जिसकी सत्ता है, ऐसा शुद्ध सत्ता स्वरूप जो वस्तु है, यानी त्रिकाल टिकने वाला ऐसा अविनश्वर भगवान आत्मा मां जे अनंत गुणों वस्या छे ते शुद्ध छे। आ रीते तेने शुद्ध हुआ पणू घटे छे आ विशेषण थी सर्वथा अभाववादी नास्तिकोनो मत खंडित थयो। यहां तो बताना है तो अपने स्वभाव का स्वरूप का वर्णन करना है, लेकिन वो वर्णन करते करते कि ये हमेशा त्रिकाल सत्ता स्वरूप भाव स्वरूप ऐसा जो पदार्थ है जिसको हमें नमस्कार करना है और हम कर रहे हैं, वो वस्तु कैसी है? तो त्रिकाल टिके भाव सत 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 सत्ता स्वरूप है। ये कहते कहते क्या हो गया? जो ऐसा कुछ है ही नहीं ऐसा मानने वाले जो नास्तिक है, अभाव स्वरूप है ऐसा मानने वालों का यहाँ मत का खंडन हो जाता है। कथंचित अभाव कहता आत्मा स्वसत्ता थी छे। क्या कह रहे हैं? कथंचित अभाव कहता, यानी क्या कह रहे हैं कि प्रभावेन आपकी अस्थि भी है और आपकी नास्ति भी है। ऐसा कहने से क्या बात करते हो? मैं तो यहां हाजिर हूं ना, और मैं नहीं हूं ऐसा बता रहे हैं आप? ठिकाने पे तो हो, ये साक्षात मैं दिख रहा हूं ना यहां, तो मैं तो हूं यहां और मेरी नास्ति? हां तेरी नास्ति है। कैसे? तो तेरी अस्थि तेरे में है पर में नहीं है। पर में यानी जो क्या है? सोफा है। सोफा में आपकी अस्थि है? ये सामने स्टैंड रखा है उसमें अस्थि है? शरीर में? ख्याल में आया ना? ख्याल में आया ना? ये पर पदार्थ है बहन। देखो ये बात हम पहले नहीं जानते थे, अभी नहीं जानते थे, ये हमको कैसा समझा? उत्तर देने में टाइम लगा। सोफा जैसे नहीं, टेबल नहीं, अरे फिर शरीर? अच्छा अच्छा नहीं 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 नहीं, नहीं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप समझदार हो और झट से समझ जाती हो। हाँ क्या बात है? देखो यहां पर क्या बता रहे हैं? कथंचित अभाव केता, यानी मेरा कहो या आपका कहो या किसी का भी, कथंचित सद्भाव है और कथंचित अभाव है। सद्भाव यानी उसकी हयात, यानी है बना जो है, सत्ता जो है, तो वो सत्ता स्वरूप भी है और असत्ता स्वरूप भी है। तो सत्ता यानी मेरी अस्थि कहो, मेरी विद्यमानता कहो, मेरी उपस्थिति कहो, कि मेरे स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव में है, और मेरी नास्ति कहो, मेरा अभाव कहो, मेरी असत्ता कहो, परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव में है। ये ऐसा कथनचित मेरी अस्ति है और कथनचित मेरी नास्ति है, ऐसा जो वस्तु स्वरूप है वह तो जैन दर्शन में ही एकमेव जगत आपको मिलेगा, अन्य तो कहीं नहीं मिलेगा। इस तरफ वस्तु स्वरूप जैसा यथार्थतया है उसका कथन अन्यत्र कहीं नहीं प्राप्त होगा। तो क्या कहते हैं, कथनचित अभाव के ता आत्मा स्वसत्ता थी छे अने परसत्ता थी नथी, ए वात तो साची छे। स्वपने भाव रूप अने परपने अभाव रूप छे, एम स्वथी अस्ति अने परथी नास्ति, ए तो बराबर छे। सर्वथा भावनी सामे, हाँ साहेब, सामे सामे सर्वथा अभावनी सामे, भावे कहीने, भावाय कहीने भगवान आत्मा शुद्ध हुआ पने विराजे छे, एम कहियु छे। क्या है वो भाई? नहीं नहीं नहीं, मैं इस तरह समझ रहा हूँ, आप देखो जो भी योग्य होगा। कौन सी किताब है? अच्छा, ये ऐसा कहना चाहते हैं कि ये ऐसा यहाँ कह रहे उसके अगेंस्ट, सामे यानी उसके अगेंस्ट इस तरह कह रहे, डू यू फॉलो मी? देखो देखो, सर्वता अभावनी सामे यानी पहले अभाव किया और फिर कहा कि भाव भी है, यहाँ तो भावाय कह रहे ना, तो सर्वथा जो अभाव मानने वाले हैं उनके अगेंस्ट भावाय कहीने भगवान आत्मा शुद्ध हुआ अपने विराजे छे, हम कहूं छे साथे नहीं होना चाहिए। अभी वो भैया जो है वो देख लो, मुझे जो लगता है वो ये सही लगता है, क्योंकि साथे यानी दोनों एक साथ हो गया ऐसा, आई डोंट नो। ये तो जब कभी कोई ये सुनेगा ना तो उसमें जो एक्चुअली स्वामी जी ने जो बोला होगा वो इसमें लिखा, वर्ड टू वर्ड होगा तो यहाँ बस सामे लिखा है, वहां साथे लिखा है, क्या मालूम, मुझको तो सामे बराबर लगता है। क्योंकि ये तो देखो, ये क्यों मैं बता रहा हूँ कि ये जो हम धर्म युगल जिसको कहते हैं वो परस्पर विरुद्ध है ऐसा प्रतिभासित होते हैं, विरुद्ध तो है नहीं, यानी मेरी अस्ति भी है और नास्ति भी है, ख्याल में? अब साथे की अपेक्षा से देखा जाए तो दोनों एक ही समय में, ये बात बराबर है, उसमें भी कोई दो मत नहीं है, यानी अस्ति नास्ति धर्म पहले अस्ति और बाद में नास्ति है ऐसा नहीं, अस्ति नास्ति दोनों एक साथ ही है। तो अब जैसा लेना है ले सकते हैं आप। अब मैं तो कुछ उसमें जजमेंट देने असमर्थ हूं, लेकिन यहाँ सामे जो लिखा है वो अधिक पावरफुल लगता है मुझे, ठीक है। वड़ीते के वो छे चित स्वभावाय पोते शुद्धात्मा तेनो स्वभाव चेतना गुण स्वरूप, एटले चेतना गुण स्वरूप यानी जाणवू देखू एवा स्वरूप, एवा गुण स्वरूप भगवान आत्मा छे। ये चित स्वभाव बताया ना, चित यानी ज्ञान दर्शन स्वरूप।
ऊपर के पैराग्राफ में लिखा है भावायकी वाले, आ विशेषण थी सर्वथा अभाववादी नास्तको नो मत खंडित थयो, इसलिए नीचे जो लिखा है सर्वथा अभावनी सामे भावाय कही नहीं, यानी वो नास्तिकवादों के सामने भावाय क्या विरुद्ध की बात।
ये क्या है, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि वो आपकी सेकंड एडिशन है तो आपने सोचा होगा कि शायद उसमें गलती सुधारी होगी, तो मैं इसी को भी कहूंगा कि शायद उन्होंने नई गलती भी की होगी टाइपिंग में, क्योंकि ये जो लिखा है ना वो तो उनके पास मौजूद नहीं होगा, पहले तो कंपोज करते थे, अभी तो वो हो गया, क्या है, लिखने वाला गलती कर सकता है। सभी लोग विनोद भाई नहीं है, चलो। क्या कह रहे हैं? आ विशेषण थी सर्वथा गुणगुणीनो भेद माननार नैयायिकोनु मतनु खंडन थयु। अभी क्या होता है, यहाँ ऊपर क्या बताया? पोते शुद्धात्मा तेनो स्वभाव केवो छे चेतना गुण स्वरूप जाणवू देखो एवा गुण स्वरूप भगवान आत्मा छे। गुण वाळो नो कीधु हो, गुण स्वरूप कीधु, गुणमय जिसको हम कहेंगे, यानी जिसका स्वभाव कहो, गुण स्वभाव कहो या गुण स्वरूप कहो, वही कैसा है कि जानना देखना, ऐसा गुण से स्वभाव है उसका, ज्ञान स्वरूप ही है, दर्शन स्वरूप ही है जिसका स्वभाव। अब यहाँ गुण वाला कहेंगे तो दो भिन्न बातें मिलकर एक हो गई। जैसे हम कहेंगे कि दंड के सहित जो होगा उसको दंडी कहेंगे, मतलब लकड़ी वाला, पैसा वाला, मोटर वाला, तो ये दोनों भिन्न बातें हैं। तो वैसा न कहते हुए, ज्ञान वाला न कहते हुए, गुण वाला न कहते हुए, गुण स्वरूप कहा, तो उससे क्या अर्थ निकलता है? ये नीचे वाली एक लाइन है ना, आ विशेषण थी सर्वथा गुण अने गुणी, यानी गुण और द्रव्य, एनो भेद मानना नैयायिकोना मतनु खंडन थयू। ये गुण स्वरूप कहा, इसका अर्थ ये है कि गुण और द्रव्य का नित्य तादात्म्य संबंध है, वो कभी अलग मतलब नहीं दिखाई देंगे हमको, इसलिए कहते हैं कि उस स्वरूप है। तो अन्य लोग जो है नैयायिक मत वाले, वो मानते हैं कि गुण और द्रव्य एक साथ आते हैं और वो द्रव्य होता है, वो गुण गुणीनो भेद मानने वाले हैं वे। वो बात उसका यहाँ खंडन हो जाता है। प्रदेश भेद न हुआ छता नाम भेद लक्षण भेद अने संख्या भेद थी गुण गुणी बच्चे भेद छे। अभी अगर आपको याद होगा तो हमने एक टेबल बनाया था, हा? यानी देखो हम जब कहते हैं, आपको मालूम है ना ये टेबल हमने बनाया था, हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को, तो वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से जब हम चार कॉलम बनाएंगे ना, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, उसको किसको उसमें बिठाना है, तो द्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव, गुण का द्रव्य क्षेत्र काल भाव, पर्याय का द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो जब हम उस अपेक्षा से देखते हैं तो वहां द्रव्य और गुण की बात करेंगे, पर्याय की तो यहाँ बात करनी ही नहीं अपने को। तो द्रव्य जो है उसका द्रव्य जो होगा, ख्याल में, और जो गुण है उसका जो द्रव्य होगा, तो जो अभी मान लेते हैं कि हम यहाँ द्रव्य जीव द्रव्य है और ज्ञान गुण है, तो जीव द्रव्य का द्रव्य जीव क्षेत्र कितना होगा साहब? असंख्यात प्रदेशी काल, हाँ जी, अनादि अनंत, और भाव, तो हम समझ ले कि जीव द्रव्य की जो परिभाषा है वो हम मान लेते हैं। अब गुण गुण जो है ज्ञान गुण, उसका द्रव्य कौन सा होगा? जीव द्रव्य। उसका क्षेत्र कौन सा होगा तेजो? हाँ बोलो बहन, नहीं मालूम, ज्ञान गुण का क्षेत्र नहीं मालूम आपको? हाँ, तो नहीं क्यों बोलने का? बोलने का नहीं, ठोकने का, कुछ भी गलती होगा तब भी वांदा नहीं, लेकिन बोलने का, अरे मैं नहीं जानता हूं, मुझे मालूम नहीं, बोलने वाला सीखना नहीं चाहता है, भले झूठ आ जाए, गलत आ जाए, अरे गलती करेगा वही सुधरेगा। काल बोलो बेन, किसका, किसकी, किसके काल के? ज्ञान गुण, शाबाश, मैं समझा उसी को भूल गए। और गुण की परिभाषा जो है, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में। अब हम दोनों को जब कंपेयर करते हैं, द्रव्य और गुण, इन दोनों का द्रव्य एक ही है, क्षेत्र एक ही है, क्योंकि दोनों ही अनादि काल से अनंत काल तक टिकेंगे। और मैं क्या बोल रहा था, मैं काल की बात है, क्षेत्र 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 जो है वो असंख्यात प्रदेशी है, और गुण जो होता है वो द्रव्य के संपूर्ण भागों में रहता है, तो उसका भी असंख्यात प्रदेश है। तो दोनों का क्षेत्र एक जैसा है, काल भी दोनों का अनादि अनंत है, तो द्रव्य क्षेत्र अने काले एक छे, अने भावे भिन्नता छे, क्योंकि भाव यानी उसका जो परिभाषा जो हमने देखी थी, वो तो जिसमें ज्ञान दर्शन है वह जीव द्रव्य, और जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में रहता है तो भाव में भिन्नता है। यानी द्रव्य और गुण यह भेद स्वरूप है या अभेद स्वरूप है, ऐसा जब कहेंगे तो कहीं जगह हमको लगता है कि वो दोनों अभेद है, कभी अलग नहीं होते। तो अलग क्यों नहीं होते? क्योंकि दोनों का द्रव्य एक है, दोनों का क्षेत्र एक है और दोनों का काल एक है। लेकिन फिर वो अभेद है तो कहते कथनचित अभेद है, यानी किसी अपेक्षा से अभेद है, तो फिर और कैसे है? तो कथनचित भेद स्वरूप भी है। तो भेद में क्या, एक तो भाव की हमने भिन्नता देखी, और क्या क्या है कि संज्ञा, संज्ञा यानी नाम, एक का नाम क्या है द्रव्य, दूसरे का नाम है गुण। अगर दोनों ही एक होते तो दो दो नाम क्यों रखते? तो संज्ञा की अपेक्षा से भेद है। फिर कहते हैं संख्या की अपेक्षा से, तो द्रव्य कितने हैं, एक द्रव्य को हम देखे ना, और गुण कितने हैं, अनंत, ख्याल में है? तो फिर संख्या में भी भेद है, नाम यानी संज्ञा भेद है, संख्या भेद है, लक्षण भेद है, प्रयोजन भेद है। लक्षण यानी यहाँ प्रयोजन है, ये लेना क्या हमने भाव भिन्नता जो देखी। तो इस तरह यहाँ समझा रहे। अभी ये जो बात कौन सी चल रही थी अपनी, तो कहते हैं ये गुण और गुणी ये अभेद है, यह बात बताने से ये सर्वथा भेद मानने वाले नैयायिकों का यहाँ खंडन कर दिया। अब आगे समझा रहे हैं, प्रदेश भेद न हुआ छता, यानी द्रव्य में और गुण में प्रदेश भेद है नहीं, छता नाम भेद जिसको हमने संज्ञा भेद कहा, लक्षण भेद, संख्या भेद थी, गुण गुणी वच्चे भेद छे। गुण गुणी ने के वो नहीं सॉरी गुणी ने गुणी के वो, गुण ने गुण के वो, एम नाम भेद छे। द्रव्यनु लक्षण के गुण ने धारी राखे ते द्रव्य, एम द्रव्यनु लक्षण द्रव्यना आश्रय, अने गुणनु लक्षण गुणना आश्रय, एम लक्षण भेद छे। तथा गुणी एक अने गुणो अनेक, एम संख्या भेद छे। एम हुआ छता पन प्रदेश थी अभेद छे, एम न माननार सर्वथा भेद माननार नो मत झूठो छे, एम कहे छे। अभी ये बात जब हम देखते हैं तो ये यहाँ जो लिखा है वो अपने को आसानी से समझ में आता है। वड़ीते के वो छे स्वानुभूत्या च कासते, चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा पोता नहीं, अनुभव रूप क्रिया थी, स्वने अनुसरीने थती परिणति थी, शुद्ध चैतन्य नी निर्मल अनुभूति थी जनाय ते वो छे। ये कैसा हाथ, मतलब कैसे जानने में आएगा? तो अनुभूति के अलावा ये अपने को जानने में नहीं आएगा, इतनी बात बताते। फिर से पढ़ता हूँ, देखो क्या कह रहे हैं। स्वानुभूतिया चकासे थे एटले चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा पोतानी अनुभवन रूप क्रिया थी। ये कौन अनुभवेगा? मेरा आत्मा दूसरा कोई अनुभवेगा? मैं नहीं तो नहीं, कम से कम केवली भगवान तो अनुभव करेंगे कि नहीं मेरे आत्मा का? अनुभव नहीं करेंगे, जानेंगे, ख्याल में? वेदन करना इसी को कहते हैं अनुभवना। तो मेरे आत्मा में जो अनंत सुख है उसका वेदन मैं खुद कर सकता हूं, लेकिन वो जानेंगे कि इसमें अनंत सुख है, बस, ख्याल में? तो क्या कह रहे हैं कि चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा पोतानी अनुभवन रूप क्रिया थी, स्वने अरुसने अनुसरीने थती परिणति थी, शुद्ध चैतन्य नी निर्मल अनुभूति थी जणाय तेवो छे। राग थी प्रकाशे एटले जणाशे के ज्ञान मां आवशे एवो आत्मा नथी, तेने राग थी रागनी के निमित्तनी अपेक्षा छे ज नहीं। यानी कोई निमित्त आएगा तो मुझे अनुभव होगा, या मैं फला प्रकार का राग करूंगा तो मुझे आत्मा का अनुभव होगा, ऐसा कहते कोई राग की या निमित्त की, क्या कह रहे? अभी तक तो हमने सुना था कि कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र से आत्मानुभूति नहीं होती है, तो कम से कम सच्चे देवगुरु शास्त्र को तो हम आत्मानुभूति करा देंगे कि नहीं? तो कहते नहीं, जब जब तुझे आत्मानुभूति हो रही है या होती है उस समय सामने निमित्त रूप से सच्चे देव गुरु शास्त्र ही होंगे, अन्यथा कोई नहीं होगा। इसका वो निमित्त रूप से वहां है, पर वो तुझे आत्मानुभूति करा दे ऐसा नहीं, क्योंकि अनादि काल से इस विश्व में केवली भगवान तो विद्यमान है ही है। एक समय भी ऐसा नहीं आया है कि जब केवली का विरह हो या अभाव हो। अनादि काल से कह रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान कहो या सर्वज्ञ भगवान कहो कि विद्यमानता है। ख्याल में आया? तो फिर वो तो हमें भाई, वो तूने जब तक स्वयं ऐसा प्रयत्न नहीं किया है तो तू प्रयत्न कब करेगा? कि जिनेंद्र भगवान ने बताया हुआ जो आत्मा का स्वभाव है, स्वरूप है, वो समझकर, तो समझेगा तो कब? जब उसकी तू भाषा सुनेगा, उसकी तू उपदेश सुनेगा, उसके लिखे हुई शास्त्रों से तेरी पढ़ाई होगी, तब कहते हैं तू अपने स्वरूप में गुप्त हो जाएगा, अपने स्वरूप का अनुभव करेगा। तो उन पर आरोप आएगा कि भाई ये हमें निमित्त थे। क्या कहते हैं? निमित्त से कार्य नहीं होता, ऐसा बता रहे। कार्य तो स्व से होगा, इसलिए क्या समझाया कि थर्ड लाइन, राग थी प्रकाशे एवो आत्मा न थी, तेने रागनी के निमित्त नहीं अपेक्षा छेज नहीं। ख्याल में आई? अनुभवन रूप क्रिया ते व्यवहार छे, तेमा निश्चय ध्रुव आत्मा जणाय छे, अनुभूति ते अनित्य पर्याय, नित्य ने जाने छे। वाह! क्यों, क्या कहते हैं? जो पर्याय है वो तो एक समय की है, और पर्याय एक समय की है इसलिए वो कैसी है? नित्य है ना? अनित्य है। आपको कोई नित्य पर्याय याद है? हाँ वासंती बहन, नित्य पर्याय किसको कहते हैं मालूम है आपको? नहीं, कोई बात नहीं। मम्मी जी आपको एम? अच्छा अच्छा, हूँ बताऊ तमें हा पाड़शो बे मिनिट में, अत्यारे भले तमे मने सिखवाड़ो। इनका ऐसा कहना है कि पर्याय कभी नित्य होती नहीं है, ये हम नित्य होती ही नहीं, ये एकांत हो गया हो, किसी अपेक्षा नहीं होती कहो तो मैं मानूंगा। मैं कहता हूं सिद्ध जो है उसका काल क्या है? सिद्ध पर्याय का, हाँ जोर से बोलना है। सिद्ध पर्याय का काल मैं पूछ रहा हूं, सादी अनंत, तो हमने कैसा गिना? वैसी की वैसी, वैसी की वैसी, वैसी की वैसी, सिद्ध 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 सिद्ध। तो एक दफे शुरू हुई आदि तो कब तक टिकेगी? अनंत काल तक। तो अभी हम एक समय के पर्याय मानेंगे क्या उसको? ख्याल में है ना? हाँ, पर इने ईज था ते अपेक्षा इन्हें नित्य कहवाई। हाँ भाई, अपेक्षा थी बात छे। अब एक तमने सवाल, बधाने हो तमने एटले तमने नहीं, बधाने पूछू, ये जो अनेकांत जो है, तो ये अपना धर्म अनेकांत स्वरूप है ना? क्या नहीं है? तो क्या अपना धर्म जैन दर्शन सर्वथा अनेकांतमय है? हाँ बोलो बहन। नहीं है तो कैसा है? अच्छा, अनेकांत स्वरूप है क्या नहीं, ऐसा मेरा पूछना है। सर्वथा अनेकांत तो है या कैसा है? तो आप कहती है नहीं है, सर्वथा नहीं है, तो कैसा है, ऐसा सवाल है। हाँ तो कथनचित अनेकांत स्वरूप है, वैसा ये पर्याय की जो आप कह रहे, उसका स्वभाव तो एक समय टिकने वाला है, लेकिन वो भी कैसा है? कथनचित अपना जीव द्रव्य का स्वभाव कैसा है? नित्य है क्या अनित्य है? कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य है, बराबर। कथनचित नित्य मानेंगे तो हम वो तो वैदिक हो जाएंगे, वेदांतवादी, और सर्वथा नित्य मानेंगे, सर्वथा नित्य मानेंगे तो हम वेदांत मत वाले होंगे, और सर्वथा एक अनित्य मानेंगे तो बौद्ध धर्मीय हो जाएंगे। तो हम दोनों हैं अपेक्षा, वो भी दोनों एक साथ कथनचित अपेक्षा से हैं। वैसा यहाँ जो कह रहे हैं कि पर्याय जो है वो कथनचित एक समय की है, वो तो उसका निश्चय से कहने को ऐसा आएगा, लेकिन जब हम उसको वैसी के वैसी की वैसी के वैसी की पर्याय की जब बात करेंगे, तब हम काल की अपेक्षा से। अब किसी को पूछा जाए साहब आप मिथ्या दृष्टि कब से हैं, क्या बात करते हो अनादिकाल से हूँ, अरे भाई हमने तो सुना था कि एक समय की प्रिया है तेरी, लेकिन वो कहने वाला जिस अपेक्षा से कह रहा है तो भी अपेक्षा लगा के कहता है, क्योंकि वही की वही वैसी की वैसी वैसी की वैसी वैसी की वैसी प्रिया मेरी आ रही है, इसलिए कब से आ रही है, बहुत टाइम से आ रही है। हम कहते हैं ना आप बीमार हो, क्या हो रहे हैं, 2 साल से बुखार आ रहे हैं, कितना आता है, कुछ नहीं साहब 99 रोजाना 99 तो क्या बुखार वही का वही है, वह तो नया ही नहीं आता है, लेकिन 2 साल से चल रहा है, ख्याल में। तो वैसा आप पर्याय जो है ना बहन, वह तो आप जो कहती वो बिल्कुल 100 आना ठीक है 16 आना ठीक है, कौन सा एक समय की पर्याय है, बिल्कुल है, लेकिन वो निश्चय से व्यवहार से जब हम बात करेंगे तो उसको हम काल की अपेक्षा आगे पीछे लगाएंगे। जैसा हम कहते हैं आपको वर्तमान 24 के नाम मालूम है, वर्तमान 24 भगवान के कहां से कहां तक है, आदिनाथ से महावीर, तो वो वर्तमान 24 है, वो अभी है, आज है, अभी इस समय में, हाँ तो अरिहंत अवस्था में,
तो अभी तीर्थंकर है कि सिद्ध है
और हम तो एक कोड़ा कोड़ी सागर को वर्तमान काल कहते हैं, आ गई ना बात, अब आगे चलो, अभी कौन सा वर्तमान में उत्सर्पणी चल रहा है या अवसर्पणी काल चल रहा है, वर्तमान में अवसर्पणी काल, अवसर्पणी काल कितने कोड़ा कोड़ी सागर का है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का, ख्याल में, तो कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का टाइम वर्तमान में हमने उसको कॉम्पैक्ट कर दिया ख्याल में है ना, ये तो कथन पद्धति ऐसी होती है। आप मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि आपने जो कहा था कि एक समय की पर्याय वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ तो हमें देखना है कि भाई अपेक्षा से क्या बात चल रही है, तो वो बात यहाँ जो है क्या कहा कि कहां से आई थी ये बात, हाँ तेमा निश्चय ध्रुव आत्मा जनाई छे, हाँ शू कहो, अनुभूति ते अनित्य पर्याय नित्य ने जाने छे। अब यहाँ जो पर्याय है ना वो हमेशा अनित्य ही होती है, वो अनित्य पर्याय नित्य को जानती है, तो यह जो जानन रूप जो क्रिया हो रही है आत्मा का अनुभव, वो कम से कम कितना समय चलेगा, आप जानते हो भाई साहब, हाँ बराबर बोलो, जोर से बोलो, अंतर मुहूर्त, तो अंतर मुहूर्त में कितने समय होंगे, कम से कम असंख्यात प्लस एक, आवली प्लस एक, तो फिर भी हम उसको क्या कहेंगे, अनित्य पर्याय, वो लगातार वैसी की वैसी पर्याय, मतलब वही की वही नहीं, वैसी की वैसी पर्याय, अनुभवन रूप अनुभवन रूप अनुभवन रूप, तो वो तो केवली के भगवान के ज्ञान की बात है, वो तो जानते ऐसा, लेकिन हम क्या जानेंगे कि ये पर्याय जो अनित्य है वो नित्य को जान रही, हर समय अनित्य पर्याय पर नित्य को जानती है हर समय, ऐसा ये क्यों कह रहा हूं, आपने एक एक समय की बात उठाई ना, इसलिए तो कहते अनित्य पर्याय। अभी हम द्रव्यान योग की अपेक्षा से देखते हैं तो पर्याय एक समय ही टिकती है, और वो जो हर समय व्यय होने वाली जो पर्याय है वो त्रिकाली ध्रुव नित्य स्वरूप को अनुभवती है। अब यहां क्या बताना चाहते हैं, नित्य द्रव्य नित्य ने अनुभव तो नहीं, अनित्य पर्याय नित्य ने अनुभवे छे, देखो तेमा निश्चय ध्रुव आत्मा जणाय छे, अनुभूति ते अनित्य पर्याय नित्य ने जाने छे, नित्य नित्य ने शू जाने, नित्य अक्रिय हुआ थी तेमा क्रिया रूप जाणू केम थाय, पर्याय ने द्रव्य जे ध्येय छे ते पर्याय मा जणाय छे, आवी सुंदर बात मांगलिक मां प्रथम कही छे। आ शैली तो जो व्यवहार समकित होय तो निश्चय समकित थाय एम नथी, ये क्या नई बात निकाली, नहीं समझ में, देखो मैं आपको एक उदाहरण देके आगे चलूंगा, वो तो उदाहरण तो आप जानते हैं, हा? देखो हमने अभी देखे थे 3 प्रकार के जैन, एक कुलधारी जैन, एक नामधारी जैन और एक भावधारी जैन। तो कुलधारी जैन किसको कहते हैं वो तो हम जानते हैं, कि जो जैन कुल में जन्मा है वह कुलधारी जैन, और भावधारी जैन भी अभी हमने देख लिया था कौन सा, कि जिसने अपने आत्मा का अनुभव किया है, यानी जिसने मोह को और आंशिक राग द्वेष को जीता है वह तो भावधारी जैन है। अब नामधारी जैन यानी किसको कहना, तो अभी हम एकदम स्थूल अपेक्षा से देखते हैं कि जो अष्टमूल गुण धारक है, अष्टमूल गुण धारक यानी जो तीन मकार, मकार यानी मध्य, मांस और मदिरा, इसका जिसने त्याग किया है, मैंने क्या कहा, अच्छा अच्छा मध्य और मदिरा हो गया, मधु मध्य और मांस तीनों बातें, मांस से तीन बातें चालू होती है, उनका जिन्होंने सेवन का त्याग किया है, और जो पांच प्रकार के उदुम्बर फल जो है, पांच प्रकार के उदुम्बर आदि फल उनका त्याग किया है, ऐसे जो अष्टमूल गुण धारक है ऐसा ही जीव क्या आत्मानुभव करने लायक हो सकता है। क्या कहा कि वह भावधारी जैन हो सकता है, यानी जो भावधारी नामधारी जैन है वही भावधारी जैन बनने के लायक होगा, जो भावधारी जैन है वह नामधारी जैन होगा ही होगा। ख्याल में नहीं आई बात, भावधारी जैन ने जिसने आत्मा का अनुभव किया है उसके मध्य मांस आदि का सेवन होगा ही नहीं। क्या कहा, जो भावधारी जैन है वह नामधारी जैन होगा ही होगा, लेकिन जो नामधारी जैन है वह भावधारी जैन नहीं होगा ही, ऐसा नहीं। यानी वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है।
होगा में भविष्य काल नहीं समझना, है ऐसा समझना, है ना, यानी जो भावधारी है वो नामधारी होता ही है, ऐसा नहीं तो होगा यानी बाद में होगा वो बात नहीं है, नहीं तो व्याकरण मत चलाना इधर।
क्या कह रहे, देखो यानी जो नामधारी जैन है वह भावधारी है ही ऐसा नहीं है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो भावधारी जैन है वह नामधारी जैन है ही है। अब यहां क्या कहते हैं, देखो वो बात क्यों इतनी सारी उठाई के कहां गया, हाँ व्यवहार समकित हो तो निश्चित समकित थाय एम नथी, यानी व्यवहार समकित किसको कहा गया है कि जो सच्चे देवगुरु शास्त्र है उनकी जिनके यथार्थ श्रद्धा है, यानी उनके प्रति जो राग के परिणाम है उनको व्यवहार रत्नत्रय के धारक कहा गया, लेकिन वो रत्नत्रय के धारक का व्यवहार आरोप कब आता है कि जब उनके निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति होती है, यानी निश्चय उनको सम्यक्त होता है तब उनके जो सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति जो राग परिणाम है उसको व्यवहार समकित कहा गया है। अब यहाँ क्या कहते हैं, अभी हम मैं मेरी बात बताऊं तो आप अपने आप समझ लेना कि हमने कभी भी, अभी आज की बात है, गए 25 साल की बात है, कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र को हमने कभी नमन नहीं किया है तो हम सच्चे देवगुरु शास्त्र के ही भक्त हैं, तो हमें व्यवहार सम्यक्त्व है ऐसा हमने माना, तो व्यवहार सम्यक्त्व है इसलिए निश्चय सम्यक्त्व होगा ही ऐसा नहीं है, और जिसके निश्चय सम्यक्त्व है और वो कहीं अन्य इधर तिधर कोई देव को जाके नमस्कार करता हो, अन्य गुरु को नमस्कार करता हो, ऐसा भी नहीं होगा, वह जो निश्चय सम्यकधारी है वह व्यवहार सम्यक भी होगा ही। अब यहाँ क्या कहते हैं, व्यवहार समकित होए तो निश्चय समकित थाय एम नहीं, यानी वो भले व्यवहार सम्यक भी होगा, व्यवहार सम्यक यानी ये तो सही रूप से देखा जाए तो उसको व्यवहार समकित भी नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ उतनी डिटेल में बात नहीं ली है, यहाँ तो जैसे सच्चे देवगुरु शास्त्र के अलावा अन्य किसी को न मानने वाले को व्यवहार समकित कहा है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, पहले में पहले तो हमें सच्चे देवगुरु शास्त्र का ही स्वरूप समझना है, क्यों साहब हमको जो करना है हम करेंगे, तुमको क्या तकलीफ है, तेरे को सम्यक दर्शन नहीं होगा ऐसा यहां लिख रहे, और वो तो समझने के लिए हम यहाँ आए हैं। क्यों, क्या कहा, व्यवहार समकित होए तोते निश्चित समकित थाय एम नथी। अभी कल और इसी की विशेष, कल यानी 26 तारीख को हम इसकी और आगे बात बढ़ाएंगे। हाँ 26 जनवरी है और आपको स्वतंत्रता दिलाने के लिए यहाँ बुलाया जा रहा है, क्योंकि हम तो अभी परतंत्र में बैठे ना, तो अगर जिसको स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो आना। जावाणी के ज्ञान से सूजे लो कालो सोवाणी मस्तकणमो सदा देत हो।